أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ 19th آڈیو ہے اس کتاب کی 3 منٹ قیامت کے. گھر بسانا اور فیملی شروع کرنا اسلام میں اس بارے میں کتنی اہمیت ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے کہ گھر چلانا اور گھر بسانا ایک سخت کار اور سنگین کار ہے, لیکن ہماری روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ شادی کرنا سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس سے ہمارا آدھا دین کامل ہو جاتا ہے. اور جب اس فیملی میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے بہت زیادہ خیرات اور برکات اس فیملی کے شامل حال ہو جاتے ہیں اور ان پر نازل ہوتے ہیں. خداوند متعال نے سورہ اسراء کی 31 آیت میں فرمایا ہے کہ ہم انہیں اور تمہیں روزی دیں گے, یعنی خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اگر ہم فیملی شروع کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, تو جو ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں اور جو ہماری زوجہ ہوتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ ہی لے کر آتے ہیں, تو اس بارے میں پریشان نہ ہو کہ ان کا رزق کہاں سے آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی ایسی برکات اور نعمات جو خداوند متعال کی طرف سے آتی ہیں وہ بخاطر اولاد ہماری زندگی میں آتی ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں اولاد موجود ہے, اس وجہ سے خداوند متعال کئی برکات اور نعمات کو ہماری زندگی میں نازل کرتا ہے. لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بہت آسان اور سہل ہوتا ہے, نہ مخصوصاً شادی کرنا اور گھر چلانا اور بچے پیدا کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا ایک بہت ہی سخت مرحلہ ہے زندگی کا. اور خداوند نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو یقیناً سختی اور رنج میں آفریدہ ہے, یعنی خلق کیا ہے. یعنی دنیا کی حالت ایسی ہی ہے کہ جب تک ہماری زندگی دنیا میں رہے گی تب تک ہماری زندگی میں سختی اور مشکلات رہیں گے. لیکن یہاں برزخ کے عالم میں نے دیکھا کہ جب بھی ایک انسان اپنے ہمسر کے پاس, یعنی چاہے پھر وہ شوہر ہو یا پھر وہ ان کے خانم ہو, جب بھی ایک انسان اپنے ہمسر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی حالت میں کئی خیرات اور برکات شامل ہو جاتے ہیں اور خداوند متعال کئی نعمات کو اس پر نازل کرتا ہے. یعنی صرف یہ کہ تم جا کر اپنے ہمسر کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو خداوند متعال کئی نعمتوں کو نازل کرتا ہے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک اگر ایک مرد جا کر اپنی ہمسر کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اس کا ثواب مسجد النبی میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ ہے, اور خدا کے نزدیک یہ اس سے زیادہ محبوب تر ہے. اور کئی خیرات انسان کی زندگی میں ان کی اولاد کی وجہ سے آتے ہیں. آپ یہ جان لیں کہ انسان کی زندگی میں کوئی چیز ایسی وہ پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتا جو اتنی مہم اور اتنی بہترین ہو, مگر یہ کہ اس کی اولاد صالح. یعنی اگر کوئی چیز جو مہم ترین چیز انسان اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ اولاد صالح ہے, اور اسی اولاد صالح کی برکت سے ہمیں وہاں اس عالم برزخ میں نیکیاں اور خیرات حاصل ہوتی ہیں. اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خداوند متعال چاہتا ہے کہ ایک بندے کو خیر دیں اور اس کی زندگی میں نعمت دیں تو وہ اسے جب تک نہیں اس دنیا سے لے جاتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد کو نہ دیکھ لے. اسی لیے میں اپنی نوجوانی سے ہی یہ بات سیکھ چکا تھا اور یہ بات میں ہمیشہ یاد رکھتا تھا کہ جب بھی میں کوئی کار خیر انجام دوں یا کوئی نیک کام انجام دوں یا کوئی صدقہ دوں تو میں اس کا ثواب میرے تمام مرحومین کو ارسال کرتا تھا, بلکہ تمام مومنین و مسلمین کو, حضرت آدم سے لے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, تمام انبیاء کو, تمام ائمہ علیہ السلام کو, تمام شہداء کو, تمام ایسے افراد جو شیعہ اور مسلمان ہیں, میرے تمام مادر بزرگ اور پدر بزرگ, یعنی میرے دادا پردادا اور ان سے بھی آگے جتنے میرے مرحومین تھے, اور میری دادی نانی پردادی پرنانی, ان سب کو میں اس ثواب کا ارسال کرتا تھا. جب میں عالم برزخ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا اور پردادا اور میرے تمام خانوادے والے وہاں پر جمع تھے, اور وہ مقرر اور مرتب میرا تشکر ادا کر رہے تھے, میرا شکریہ ادا کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ ایسی اولاد پر ہمیں افتخار ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک ایسی اولاد ہوئی جو خیرات اور برکات इस औलाद की वजह से हमें मिले हैं, इसका हम बयान नहीं कर सकते। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मुहिम और बहुत ही मुश्किलात को बरतरफ करने वाले खैरात और नेमात हमें इस औलाद से मिले हैं। हम हमेशा दुआ करते हैं कि खुदावन तुम्हारी तौफीकात में बरकत दे और इजाफा करे और हमेशा तुम्हें हिफ्ज करे। हमारे ख़ानदान में बहुत से ऐसे लोग थे जो फैमिली में ही शादी करते थे, तो मैंने भी हमारी फैमिली में ही शादी की। मेरे मामू के लड़की से मेरी शादी हुई थी और मैं अपने ख़ानदान में इस बात के लिए मशहूर था कि मैं बहुत सिले रहम करता था। जितना ज़्यादा हो सकता था मेरे फैमिली के पास जाता था, मेरे रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखता था, उनसे मुलाकात करता था, उनके घर जाया करता था, उनसे पूछताछ करता था कि उनकी हालत ठीक है या नहीं। अगर कोई उनकी मुश्किल होती तो कोशिश करता उनकी मुश्किल को बरतरफ करूँ, उनकी मुश्किल को हल करूँ। तकरीबन सारी फैमिली में सब मुझे जानते थे कि मैं अहले सिले रहम हूँ और लोगों की मुश्किल को दूर करने में, मखसूसन ख़ानदान की मुश्किल को दूर करने मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। मेरी एक फूफू थी जो एक शहीद की मादर थी, वही शहीद जिसका मैंने जिक्र किया कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था तो वो मेरे पास आया था, इसी शहीद की वो माँ थी। मेरे फैमिली वाले सब यही कहते थे कि इनका ये, यानी ये फूफू का लड़का तो शहीद हो गया, लेकिन ये यानी मैं इनका बेटा हो गया हूँ। मैं इतना ज़्यादा उनके पास जाता था और इतना ज़्यादा कोशिश करता था कि उनकी हर मुश्किल को हल करूँ, हर छोटी बात का ख्याल रखता था और कोशिश करता था कि उन्हें उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आए। मेरी खाला भी एक शहीद की हमसर थी, यानी उनके शौहर शहीद थे, तो मैं उनकी भी मुश्किलात दूर करने में बहुत ज़्यादा कोशिश करता था। और दूसरे जितने भी रिश्तेदार हैं मैं जानता था जिन्हें ज़िंदगी में मुश्किलात है, कोशिश करता था कि उनकी मुश्किलों को हल करूं और उनकी मुश्किल में उनकी किसी तरह से मदद कर सकूं। जितना हो सकता था, जितनी मेरी कुदरत थी, जितनी मेरी तवानाई थी, मैं कोशिश करता था कि मेरे फैमिली वालों के मुश्किलात को दूर करूँ। और इन नेक कामों का असर मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा है और यहाँ आखिरत में भी देख रहा हूँ। और मेरे फैमिली वालों की दुआएं खैर हमेशा मेरे साथ रही है और मेरे कई मुश्किलात को बरतरफ किया है और हल किया है, चाहे वो ज़िंदगी में हो या फिर ये आखिरत में। हत्ता मुझे दिखाया गया बरज़ख़ के आलम में कि कई ऐसे हवादिस तुम्हारे सामने आने वाले थे और पेश आने वाले थे जिसकी वजह से तुम्हारी मौत वाक़ होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे फैमिली वालों के और तुम्हारे वालदैन की दुआ की वजह से ये मौत तुम्हारे सर से टल गई। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सिले अरहाम, यानी अपने फैमिली वालों के साथ सिले रहम करना, इसकी वजह से इंसान के अखलाक नेक होते हैं और इंसान का हाथ खैरात की तरफ खुल जाता है और उसका दिल और जान पाक हो जाता है और उसकी रोज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसमें बरकत होती है और उसके सर से मौत टल जाती है, यानी देर मौत में ताखीर हो जाती है। और दूसरी रिवायत में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई अपनी जान और माल से सिले रहम करता है तो खुदावंद मुताल उसे 100 शहीदों का अजर अता करता है। यह है बात सिले रहम की। इंशाल्लाह आगे का मतलब अगले चैप्टर में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये 20th ऑडियो है इस किताब का, 3 मिनट कयामत के। ये जनाब फरमाते हैं कि हिसाब किताब बहुत सख्त हो गया था और बहुत दकीक और प्रिसाइस हिसाब किताब हो रहा था, हत्ता हर सेकंड का हिसाब किया जा रहा था। मखसूसन वो जब सरकार जाते थे, जॉब पर जाते थे, क्योंकि सरकारी जॉब था तो वहाँ का बहुत दकीक और बहुत प्रिसाइस हिसाब किताब हो रहा था हर सेकंड का, ताकि ये देखा जाए कि कहीं बैतुल माल का खसारत तो नहीं किया और बैतुल माल की सैलरी लेते हुए कमकारी तो नहीं की। खुदा का शुक्र कि ये मरहला आसानी से गुज़र गया, यानी मेरे बैतुल माल वाला मसला मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत दिक्कत से काम करता था और कोशिश करता था कि मेरा कोई वक्त ज़ाया ना हो और जो सैलरी मैं ले रहा था उसका पूरा का पूरा काम अंजाम दूँ। और इसके बाद जितना वक्त मैंने मस्जिद की खिदमत में और हैयत की खिदमत में और आज़ादारी की खिदमत में और मजालिस की खिदमत में गुजारे थे, वो सारा हिसाब किया गया और मुझे बताया गया कि तुमने 2 साल तुम्हारे उम्र के इस मसाइल में सर्व किए हैं, तुमने खिदमत की है आज़ादारों की और नमाजियों की, तो इसका हिसाब किताब हम नहीं करेंगे, यानी तुम्हारी ज़िंदगी के 2 साल हम कम कर देंगे और इसमें तुम्हारे से कोई हिसाब किताब और सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पर मैं अपने कई दोस्तों को देख रहा था, कई जान पहचान वाले वालों को देख रहा था, हत्ता रिश्तेदारों को देख रहा था और उनका बदन मिसाली वहाँ पर था। वो लोग अभी ज़िंदा थे और दुनिया में मौजूद थे, लेकिन उनका बदन मिसाली यहाँ पर मौजूद था। और देख पा रहा था कि उनकी क्या क्या रूही और अखलाकी मुश्किलात हैं। अजीब था कि मैं अपने कुछ दोस्तों और हमकारों को देख रहा था कि ये शहीद के उनवान से दर्ज किए गए थे, और जैसे ये बरजख में आए तो इनका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। बिना कोई हिसाब किताब के और आमाल की बर्रसी के ये सीधे सीधे बहिश्त बरजखी की तरफ चले गए। और इनमें से कई ऐसे लोग थे जिनको मैं अच्छे से जानता था, तो मैंने इनकी सूरतों को अच्छे से अपने जहन में जब्त कर लिया। फिर वो मलक जो मेज़ के पीछे बैठा था उसने कहा, बहुत सारे तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे हमकारों के लिए शहादत लिखी गई है, बेशर्ती के वो ख़ुद अपने हाथ से अपने आमाल से इस उनवान को तबाह ना कर दे और इस तौफीक को सलब ना कर दे, वगरना इनकी किस्मत में शहादत लिखी गई है। तो मैंने इस मलक से पूछा, मैं क्या करूं जिससे मुझे भी शहादत हासिल हो सके? तो उस मलक ने इशारा करते हुए कहा कि ज़माने गैबत में, यानी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की गैबत में, परचम इस्लाम और उम्मत की विलायत वली फ़कीह के हाथ में है। तभी मैंने उनकी तस्वीर देखी, और ये बड़ा अजीब था कि मैं कई ऐसे अफराद को जानता हूँ जो उनके अतराफ़ है और उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहते थे लेकिन नहीं पहुँचा पा रहे थे। मैंने उसी लहजे कई ऐसे हवादिस और इत्तेफाकात को देखा जो अभी तक रुख नहीं दिए हैं, अभी तक अंजाम नहीं हुए हैं, लेकिन मैं उनसे बाखबर हो गया था। मैंने कई ऐसे मसूलीन और मामूरीन को देखा है कि हक़ दांस उनकी गर्दन पर है, मिलियन हा और लाखों अफराद का हक उनकी गर्दन पर है, और क्योंकि ये हुकूमत में सरकारी ओहदे पर थे तो इन्होंने जो जो गलतियां की इस वजह से लाखों लोगों की जिम्मेदारी और हक इनकी गर्दन पर आ गया था। वो लोगों से मदद मांग रहे थे लेकिन कोई उनकी मदद करने तैयार नहीं था। फिर मैंने इस मलक से कई ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब मैं जानना चाहता था। मसलन मैंने इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर के बारे में पूछा, पूछा कि उनका ज़ुहूर कब होगा। तो उसने बताया कि जब तक लोग नहीं चाहेंगे कि इमाम का ज़ुहूर हो और खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ नहीं करेंगे और आमाल अंजाम नहीं देंगे ताकि इमाम का ज़ुहूर हो और उनकी दुनियावी और उखरवी मुश्किलात बरतरफ हो, ये ज़ुहूर नहीं होगा। लेकिन अक्सर लोग मुश्किलात के होते हुए भी इमाम का ज़ुहूर नहीं चाहते हैं, और अगर चाहते भी हैं तो सिर्फ़ इसलिए ताकि उनकी दुनियावी मुश्किलात को हल किया जाए, उनकी दुनियावी मुश्किलात बरतरफ हो जाए। फिर ख़ुद उसने एक मिसाल दी और कहा, कुछ ही दिन पहले फ़ुटबॉल का एक चैम्पियनशिप मैच चल रहा था और लोग मुकद्दस मकानों पर जाकर इमाम से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे थे ताकि इस मैच में फ़लानी जीत जाए और फ़लानी हार जाए, या फ़लानी को कप मिले और फ़लानी को ना मिले। देखे, लोग इस तरह से इमाम की मदद चाहते हैं ताकि कोई जीत जाए और कोई हार जाए और उनकी दुनियावी मुश्किलात हल हो जाए। वो इसलिए नहीं चाहते कि इमाम आए और उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारे। फिर मैंने मलक से ज़ुहूर की निशानियों के बारे में पूछा और पूछा कि इसराइल और अमेरिका का क्या होगा, वो तो हाथ में हाथ दिए बैठे हैं ताकि किश्वर इस्लामी यानि इस्लामी हुकूमत को नाबूद कर सके और शिया और मुसलमान को नाबूद कर सके, और कुछ मुसलमान देश भी उनके साथ हमकारी कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, इनका क्या होगा? तो वो मलक मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा कर कहने लगा, आप निगरान ना रहिए, टेंशन मत लीजिए, ये सिर्फ़ एक पानी के बुलबुले हैं, ये कभी ना थे और ना रहेंगे, बहुत जल्दी ही नाबूद हो जाएंगे। तुम इस बात को सोच कर सुस्त ना हो जाओ और मायूस ना हो जाओ, और ना ही अपने ईमान को कम होने दो, मगर तुमने सूरह आले इमरान की 139वीं आयत पर दिक्कत नहीं की। खुदावंद मुताल इस आयत में फरमाता है, सुस्त ना हो जाओ, गमगीन ना हो जाओ, अगर आप ईमान रखने वालों में से हो तो बरतरीन रहोगे। फिर वहाँ पर मैं हज़ारों लोगों को देख रहा था जिन्होंने अपने ही हाथों से अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था, वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुदा के बताए हुए रास्ते और खुदा के बताए हुए अहकाम और दस्तूरात पर अमल नहीं किया। जो कुछ भी खुदावंद मुताल ने मासूमीन के ज़रिए तुम्हारे लिए भेजा है, पहले दर्जे में वो, यानी सबसे पहले वो तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी को सुधारने के लिए भेजा है ताकि तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी आबाद हो जाए, फिर आखिरत की ज़िंदगी आबाद होगी। मसलन मुझे बताया कि अगर वो खातून जो तुम्हें मैसेज कर रही थी, एसएमएस कर रही थी, और जब तुम्हें पता चल गया कि वो कोई नामहरम खातून है, तो अगर तुमने वो एसएमएस का रابطہ बरकरार रखा होता और कंटिन्यू किया होता, तो तुम्हारे हक़ में एक बहुत बड़ा गुनाह लिखा जाता, और उसकी वजह से तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी उसके असरात की वजह से नाबूद हो जाती। जब हिसाब किताब हो रहा था, तभी मैं मुतवज्जे हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक कोई खानुम जो बाशख्सियत और बहुत ही नूरानी है, मेरे पीछे खड़ी हुई है, बल्कि ये बता दूं कि कुछ फासले दूर पर खड़ी हुई है। और जिस तरह तमाम लोग उनका एहतराम कर रहे थे और बाअज़मत उनकी इज़्ज़त कर रहे थे, मैं समझ गया कि ये हमारी माँ फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। जब मेरे नामे आमाल के कुछ आखिरी सफ़े बाकी थे और उनकी बररसी हो रही थी, तो तब जहाँ भी मेरी कोई गलती होती, गुनाह होता और इश्तबा रहती या ख़ता रहती और उसकी बररसी होती, तो बीबी फातिमा मुझसे मुंह पलटा लेती और मुंह फेर लेती। और जब भी कोई नेक आमाल होता या खूबी होती और उसकी बररसी की जाती, तो वो मुस्कुराती और अपनी रिज़ायत का इजहार करती। मेरी सारी तवज्जो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ थी। दुनिया में जब मैं था, तो मैं बीबी फातिमा के निस्बत बहुत ख़ास एहतराम और इज़्ज़त रखता था, और बानुए दो आलम के लिए मेरे दिल में बहुत ख़ास इज़्ज़त और एहतराम था। हमेशा अय्याम फ़ातिमिया में हमारे यहाँ मजलिस होती, आज़ादारी होती, और हमेशा कोशिश करता कि उनकी याद मैं अपने अंदर ज़िंदा रखूँ और उनके बारे में सोचता रहूँ, और उन पर जो मुसीबतें टूटी उन्हें मैं अपने अंदर याद रखूं और ज़िंदा रखूं। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे परनाना उलमा में से थे और सादात में से थे, इसीलिए हम भी औलाद फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में से हिसाब किए जाते हैं, यानी हमें भी सादात हिसाब किया जाता है। अभी ये हाल है कि वो मेरे बाजू खड़ी हुई हैं और मेरे सारे आमाल का मुशाहिदा कर रही हैं। वो देख रही हैं कि मेरे क्या आमाल है, कितनी नेकियां मैंने अंजाम दी है और कितने गुनाह और बुराइयां मैंने अंजाम दिए हैं। न सिर्फ आप वहाँ मौजूद थी, बल्कि तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद थे और वो मेरे आमाल का मुशाहिदा कर रहे थे। एक शिया मोमिन के लिए बहुत सख्त है कि जब उसके आमाल की बररसी की जाए, तो तमाम इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद रहें और वो देखें कि इसने क्या क्या गुनाह किए हैं और क्या क्या इश्तबाहात किए हैं। इस लिहाज से कि मेरे कुछ ऐसे आमाल थे जिसकी वजह से मासूमीन अलैहिस्सलाम नाराहत हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। वहाँ पर मुझे इतनी शर्म आ रही थी, इतनी नाराहती हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि बस शर्म से मैं पानी हुआ जा रहा हूँ। अजीज़ो, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब ख़ुद मैं ये किताब पढ़ रहा था, तो जब ये हिस्सा यहाँ आया और यहाँ पर जब हम देख सकते हैं कि जब हमारे आमाल का हिसाब किताब किया जाएगा, उनकी बररसी की जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फरिश्ते वहाँ मौजूद होंगे, लेकिन माँ बीबी फ़ातिमा भी वहाँ होगी, इमाम अली अलैहिस्सलाम भी वहाँ होंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी वहाँ होंगे, और वो लोग सब मुशाहिदा करेंगे, देखेंगे कि हमने हमारे आमाल कैसे अंजाम दिए हैं, कितनी नेकियाँ अंजाम दी हैं, कितनी बुराइयाँ अंजाम दी हैं। हम ये बात ना भूलें कि अहलुल बैत ने हमें सीधे रास्ते पर बाकी रखने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, वगरना हम जानते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम को गुमराह किया जा रहा था, उसे हक़ से हटाया जा रहा था, लेकिन वो बीबी फातिमा थी जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया ताकि दीन बाकी रहे, और ये दीन बाकी है तो फिर हम बाकी हैं और हम सीधे रास्ते पे बाकी हैं। हमें याद रखना चाहिए कि क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं बीबी फातिमा ने। उन्होंने ख़ुद को दरो दीवार के बीच में करार दिया, अपनी टूटी हुई फसलियों को सहा है, दुश्मनों के कई जुल्मों को सहा है, दरो दीवार जलाया गया है, इमाम अली के साथ क्या गुस्ताखियाँ की गई है। हमें यह याद रखना चाहिए कि इमाम हुसैन के साथ क्या किया गया है, उनके 6 माह के बच्चे पर तीर चलाया गया। अब आप सोचें कि वो ऐसी हालत में और इतनी कुर्बानियों के बाद वहां मौजूद होंगे और हमारे आमाल की बररसी की जाएगी, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? वो सोचेंगे कि मैंने अपने छोटे बच्चे को कुर्बान किया है, हमने ओनो मोहम्मद को कुर्बान किया है, मैंने अली अकबर जैसे जवान को कुर्बान किया है, मैंने अब्बास जैसे भाई को कुर्बान किया है, इसलिए ताकि तुम सीधे रास्ते पर रहो, लेकिन देखो तुमने क्या किया, कितने गुनाह अंजाम दिए, कैसे कैसे आमाल अंजाम दिए, कुछ छुप कर अंजाम दिए, कुछ दूसरों के सामने अंजाम दिए, कई हक्क नास तुम्हारी गर्दन पे बाकी है। हम कैसे मान ले कि तुम हमारे चाहने वाले और हमारे मोमिन हो? क्या तुम भूल गए हमने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी? तो अजीज़ों, ये हमारे लिए बहुत सख्त मरहला होगा। अगर हम वाकयन बीबी फातिमा और अहलुल बैत के चाहने वाले हैं तो हम ऐसा कोई आमाल अंजाम नहीं देंगे कि वहाँ जब हमारे आमाल की बर्रसी की जाएगी तो उनके लिए बायस शर्मिंदगी हो, उनके लिए बायस हो कि वो अपना मुंह हमसे फेर लें। कितना सख्त मरहला होगा हमारे लिए कि हमारे आमाल की वजह से बीबी फातिमा हमसे मुंह फेर ले। वाकई अफसोस का मकाम होगा, वाकई अफसोस का मकाम होगा। अजीज़ों, अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपने आमाल की खुद बर्रसी कर लें इससे पहले कि वहाँ हमारी बर्रसी की जाए। हम खुद हमारे आमाल को देखें और जो इश्तबाहत हमने की हैं, जो गुनाह हमने किए हैं, जो गलतियाँ हमने की हैं, उसके लिए खुदा की बारगाह में अभी से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगें, तौबा करें और दुआ करें कि खुदा हमारे इन गुनाहों को माफ़ कर दे। और अगर हमारी गर्दन पे किसी का हक़ नास बाकी है, किसी के हमने तौहीन की है, किसी की गीबत की है, किसी का नुकसान किया है, तो कोशिश करें कि इसी ज़िंदगी में, इसी दुनिया में उसकी भरपाई करें और उस नुकसान को पूरा कर दें, ताकि वहाँ पर हमारी गर्दन पे ये नुकसान बाकी ना रहे। अगर हमने कुछ ऐसे गुनाह किए हैं जो हमारी नफ्स पे किए हैं और हमारे बदन पे किए हैं, तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें। कोई अगर ऐसे गुनाह किए हैं जो हमने छुप कर अंधेरों में किए हैं, तो उसके लिए भी खुदा की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, ताकि खुदा हमारे गुनाहों को बख्श दे और वहाँ पर हमारी रुसवाई का बायस ना बने। इंशाल्लाह, इलाही आमीन। और आप लोग ये ऑडियो सुन रहे हैं तो ख़ुद हमारे हक़ में, यानी मेरे और मेरे खानवादे के हक़ में दुआ कीजिए कि खुदा हमारे गुनाहों को बख्शे और वहाँ हमारी रुसवाई का बायस ना बने, हमारे आमाल हमारे रुसवाई का बायस ना बने। इंशाल्लाह, इलाही आमीन। फिर ये जनाब आगे कहते हैं कि मैं बहुत नाराहत था, मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत सैड हो गया था और मेरे कई अच्छे आमाल मेरे हाथ से चले गए थे और बहुत थोड़े ही आमाल किताब में रह गए थे जो मेरे काम आ सके। और इसके अलावा कई ऐसे अफराद थे जो अभी ज़िंदा थे, जो अभी दुनिया में बाकी थे, और उनके हक़ में मेरे गर्दन पे बहुत कुछ बाकी था। फ़ारसी में एक अल्फाज यूज़ होता है बेदहकार, यानि मैं उनकी उधारी मेरे गर्दन पे बाकी है। तो कई ऐसे लोगों का हिसाब किताब तो अभी बाकी ही था, जितनों का हिसाब किताब हो गया था उसके बाद मुझे लग रहा था मेरे हाथ खाली हो गए थे, लेकिन कई ऐसे हज़ारों लोग बाकी थे जिनकी उधारी मेरे गर्दन पे बाकी थी, उन्हें पूरा करना था और वो जब तक ना हो तब तक मैं बरलख से आगे नहीं जा सकता था। जब हम फ़ारसी में बेदेकारी का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पैसों वाली बेदेकारी हो या उधारी हो, लेकिन जब हम उर्दू में उधारी का मतलब यूज़ करते हैं यानी पैसों की उधारी, लेकिन फ़ारसी का बेदहकार यानी हर वो चीज़ जो दूसरे के हक़ में बाकी रह गई हो, यानी किसी की मैंने तोहीन की है, किसी की इंसल्ट की है, किसी को नासज़ा कहा है, किसी का दिल दुखाया है, तो ये इन सब के लिए मैं बेदहकार हूँ। तो फ़ारसी में फ़ारसी लफ्ज़ का मैं फ़ेलन उर्दू में उधारी वाला तर्जुमा करूँगा, जिसका माना यह है कि इनकी गर्दन पर बहुत सारे लोगों का हक़ बाकी है। फिर ये कहते हैं कि एक लहजे के लिए मेरी नज़र मेरे घर की तरफ पड़ी, वहाँ आलम बरज़ख़ से मैंने अपने घर की तरफ निगाह किया तो देखा कि मेरी जौजा जो 4 महीने से प्रेग्नेंट है वो बैठे हुए खुदा की बारगाह में दुआ कर रही है और ज़ार ज़ार रो रही है और कह रही है कि खुदाया बहक के हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, मैं तुम्हें कसम देती हूँ बीबी फ़ातिमा की कि ये मेरे शोहर की जान बचा ले, उनकी हिफाजत कर और उन्हें शिफा दे दें। और फिर दूसरी तरफ जब मैंने निगाह किया तो देखा कि एक घर में, हमारे ही मोहल्ले के एक घर में, तो छोटे बच्चे बैठे हुए खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं मेरी शिफा के लिए और मेरी निजात के लिए, और खुदा की बारगाह में रो रो कर कह रहे हैं कि खुदाया हम एक बार यतीम हो चुके हैं, हम दूसरी बार यतीम होना नहीं चाहते। ये मैं आपको बताता चलूँ कि खुदा ने मुझे तौफीक दी थी कि ये 2 यतीम बच्चों की सरपरस्ती मैं ले लूँ। इनको मैंने अडॉप्ट कर लिया था और इनका ख़र्चा सब कुछ मैं देता था और कोशिश करता था कि इनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी तरह से निभाऊं, इनका एजुकेशन, इनका खाना पीना कपड़े, इनकी ज़िम्मेदारी मैं उठा रहा था। और वो ये जानते थे कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है और मेरा ऑपरेशन सख्त होने वाला है, तो वो भी मेरे लिए रो रो कर दुआ कर रहे थे कि मैं ज़िंदा बच जाऊँ और ऑपरेशन की वजह से मेरी जान ना जाए। तो जो मलक मेज के पीछे बैठा हुआ था, मैं उससे कह रहा था, देखो तुम खुद देख रहे हो कि मेरे आमाल किस तरह नाबूद हो गए, मेरे हाथ खाली हो गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आया ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से मैं वापस लौट जाऊं, दुनिया में चला जाऊं और कुछ नेक आमाल अंजाम दूं, और जो लोगों की बेदहकारी मेरी गर्दन पे बाकी है उसे मैं पूरी तरह निपटा दूं, लौटा दूं और माफ़ी मांग लूं, हलालियत तलब कर लूं, कुछ नहीं किया जा सकता? तो उसने मनफी जवाब देते हुए कहा, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि तुम मेरी तरफ़ से बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में बयान करो कि वो मेरी शफ़ाअत करे और मैं वापस जा सकूं और मैं मेरे गुनाहों की बख्शाइश के लिए कुछ एहतमाम करूं और कुछ नेक आमाल अंजाम दूं और जो हक़ उन्नास मेरी गर्दन पे है उसको जुबरान कर पाऊं, या मुझसे जो गलतियां हो गई है उसे मैं ठीक कर पाऊं, क्या कुछ नहीं हो सकता? उसके ना कहने पर भी मैं इसरार करता रहा और कहता रहा कि एक बार तो पूछ लो, एक बार तो बीबी फातिमा से पूछ लो, शायद वो मेरी शफ़ाअत कर दे, शायद वो मेरी दुआ सुन ले, शायद वो मेरी इल्तिजा सुन ले, एक बार तो बीबी से पूछ लो। कुछ लहज़ों बाद उसने कहा कि तुम्हारी जोजा की आंसुओं की वजह से और उसकी दुआओं की वजह से, और वो 4 महीने की बेटी जो तुम्हारी जोजा के पेट में है उसकी दुआओं की वजह से, और वो 2 यतीम बच्चों के गिड़गिड़ा कर रोने और दुआओं की वजह से बीबी फातिमा ने तुम्हारी शफ़ाअत कर दी और अब तुम वापस जा सकते हो। जैसे ही उसने कहा अब तुम वापस जा सकते हो, अचानक मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन हट गई और जैसे कि मैं बस एक बड़ी ऊंचाई से गिर रहा हूँ, और चंद लहजे बाद मैं ऑपरेशन थिएटर की मेज़ पर मौजूद हो पहुँच गया। 1 सेकंड से भी कम टाइम में मैं अपने हॉस्पिटल के बेड पे पहुंच गया था और देख रहा था कि वहाँ डॉक्टर्स की टीम मुझे शॉक पर शॉक दी जा रही थी ताकि वो मुझे ज़िंदा कर सके। कई बार मुझे शॉक दिया गया और बिलाखरे उस शॉक के असर से मैं ज़िंदा हो गया, और डॉक्टर्स ने कहने लगा कि बीमार ज़िंदा हो गया, बीमार लौट आया, बीमार वापस आ गया। इंशाल्लाह आगे का मतलब अगले दर्स में बयान किया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये 22nd ऑडियो है इस किताब का, 3 मिनट कयामत के। ये जनाब फरमाते हैं कि जब मुझे कहा गया वापस चले जाओ तो पलक झपक झपकते ही मैं हॉस्पिटल के बेड पर था और डॉक्टर्स मुझे शॉक दे रहे थे, और आखिरकार उन्होंने अपनी मेहनत पूरी की और मुझे ज़िंदा कर दिया। रूह मेरे बदन में वापस आ चुकी थी और एक अजीब हालत थी मेरी। एक तरफ से मैं खुशहाल था कि मुझे एक और मौका मिला है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को सुधार सकूं और मेरे आमाल को नेक बना सकूं, और दूसरी तरफ से नाराहती और गमगीन था कि मैं उस वादी नूर को छोड़कर दोबारा इस दुनिया में आ गया हूं जो कि एक फ़ानी दुनिया है। जब डॉक्टरों ने मुझे ज़िंदा कर दिया तो फिर ये अपने वापस ऑपरेशन के काम में लग गए, और एक तवील मुद्दत के बाद इन्होंने वो जो ट्यूमर था मेरे आँख के पीछे उसे निकाल दिया, यानी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। ऑपरेशन के बाद मुझे वार्ड में ले जाया गया जहाँ पर जिसे ऑब्जर्वेशन वार्ड कहते हैं, ताकि मुझे डॉक्टर्स की निगरानी में रख सकें, और उसके बाद जब वो डिसाइड कर लें कि मैं ख़तरे के बाहर हूँ तो फिर मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बस फिर कुछ ही देर बाद वो बेहोशी का आलम कम होना शुरू हो गया और फिर दर्द और रंज वापस मेरी ज़िंदगी में लौट आया। मेरी हालत बेहतर हो चुकी थी, मैं अपनी सीधी आँख जिसके पीछे ये ट्यूमर था जब निकाल दिया गया तो अब वो मैं आँख खोल पा रहा था और देख पा रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था हत्ता एक लहजे के लिए भी उस ज़ीबा दुनिया को छोड़कर यहाँ पर वापस आ जाऊँ। जो मुद्दत में मैं यहाँ पर बेड पर पड़ा हुआ था और डॉक्टर्स ने मुझे वार्ड में रखा था, वो चंद घंटों में मैं वो सारी बातें जो वहाँ गुजरी थी उन्हें बार बार अपने जहन में दोहरा रहा था ताकि ये बातें मुझे याद रहें और मैं इन्हें हिफ्ज़ कर सकूँ। कितना सख्त मराहिल था, कितने सख्त शरायत थे वहाँ पर, इन सब को मैं तय कर कर वापस यहाँ पहुँच गया था। मैं बरज़ख़ की जन्नत को देख चुका था, मैं बरज़ख़ की बहिश्त को देख चुका था, वहाँ पर मैं राह चल चुका था, वहाँ की घास पर मैंने कदम रखे थे, वहाँ पर मैंने बीबी फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा था, वहाँ पर मैंने अइमा अलैहिस्सलाम को देखा था। मैंने देखा था कि आपकी अज़मत दुनिया और आखिरत में कितनी बुलंद और अजीम है। इस दुनिया का तहमुल करना मेरे लिए वाकई सख्त हो गया था। वहाँ की नूरानियत और वहाँ का नूरानी आलम देखने के बाद इस दुनिया के आलम को देखना बहुत सख्त था। कुछ देर बाद वहाँ पर दो खानुम नर्स आए और वो चाहते थे कि मेरे बेड को लिफ्ट के ज़रिए दूसरे फ्लोर पर ले जाए। लेकिन जैसे ही वो मेरे नज़दीक आने लगे तो उनमें से एक नर्स का चेहरा मुझे बिल्कुल भेड़िए की तरह नज़र आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि एक कोई खूंखार भेड़िया मेरी तरफ चला आ रहा है। फिर मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और मेरे दोस्त और मेरे भाई और मेरे फैमिली वाले लोग आ गए थे ताकि वो मेरी देखभाल कर सकें। फिर मुझे बताया गया कि कुछ लोग चाहते हैं आपकी मुलाकात के लिए आए, कुछ रिश्तेदार चाहते हैं आपकी मुलाकात के लिए आए। वो लोग वहाँ से अपने घर से चल पड़े थे। इस बात की तरफ मैं मुतवज्जो हो चुका था कि वो अपने घर से निकल चुके हैं, लेकिन यही ख्याल कि उनके चेहरे जब देखूंगा तो शायद मैं उनका बातिन देख पाऊंगा, इससे मैं वहशत ज़दा हो गया था और मेरा बदन वहशत से लरजने लगा, मैं कांपने लगा। फौरन मैंने मेरे भाई से कहा कि उन्हें फ़ोन करो और उनसे कहो कि फ़लानी वापस चले जाए, हॉस्पिटल ना आए मुझे देखने के लिए। किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता था, किसी को नहीं देखना चाहता था। मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि लोगों का बातिन मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लोगों का बातिन, उनके आमाल का बातिन और उनके रफ्तार के बातिन मुझे नज़र आ रहे थे। हत्ता जब मेरे लिए ग़ज़ा लाई गई, मुझे खाना दिया गया, तो मैं आंखें बंद करके खाना खाता था। मुझे डर था कहीं इस खाने का बातिन मुझे नज़र आ जाए तो फिर मैं ये खाना नहीं खा पाऊँगा। लेकिन भूख की चपेट में मजबूर होकर मुझे खाना खाना ही पड़ रहा था। किसी को नहीं देखना चाहता था, किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता था। मेरे कुछ दोस्त मेरे पास आ जाते थे ये सोच कर कि मैं हॉस्पिटल में अकेला हूँ और तन्हाई का एहसास कर रहा हूँ, और वो मेरे पास आकर बैठ जाते थे। मैं अपना मुंह फेर कर दीवार की तरफ देखता रहता और उनके होने के बावजूद मैं और ज़्यादा तन्हाई का एहसास करता। बाद ज़ोर जब मुलाकात का वक्त होता तो अक्सर वक्त मैं मेरा मुंह फेर कर दीवार की तरफ रखता और लोगों की तरफ ना देखता। एक दफ़े मेरी सूरत का रंग उड़ गया, यानी मैं पीला पड़ने लगा, क्योंकि मुझे दर दीवार से खुदा की तस्बीह की आवाज़ें आने लगी। जो मेरे साथ थे, जो हॉस्पिटल में मेरे रिश्तेदार आए हुए थे, वो डॉक्टर से मिलकर इसरार करने लगे कि मैं अपनी आंखें खोलूं ताकि पता चले कि जो ऑपरेशन हुआ है वो कितना कामयाब हुआ है। अगर मैं मेरी आंखें बंद रखूंगा तो पता नहीं चलेगा कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है या नहीं भी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं अपने अतराफ जो लोग हैं उनकी सूरतें देखने से डर रहा था और इसीलिए मैं अपनी आंखें खोल नहीं रहा था। उस दिन मैंने खुदा की बारगाह में बहुत दुआ की, बहुत इल्तिमास किया और बहुत खुदा के बारगाह में ये दुआ कर कर चाहता था कि ये हालत मुझसे ले ले, ये हालत जो मुझ पर तारी है जिसकी वजह से मैं लोगों का बातिन और हर चीज़ का बातिन देख पा रहा था, ये मुझसे ले ले। मैं ऐसा कंटिन्यू नहीं कर सकता था, मैं ये हालत में नहीं रह सकता था। इस हालत की वजह से हत्ता मैं अपने बहुत सारे नज़दीकी खानवादे और नज़दीकी फैमिली वालों से बात नहीं कर पा रहा था, उनकी तरफ देख नहीं पा रहा था। बहुत दुआ करने के बाद खुदा का शुक्र यह हालत मुझसे ले ली गई और फिर मेरी ज़िंदगी वापस आदी और नॉर्मल होने लगी। लेकिन दिल चाहता था कि अकेले रहूं, दिल चाहता था कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और वहाँ उस बरज़खी आलम में जो जो गुज़रा था बार बार मैं अपने जहन में दोहरा रहा था और वो मेरे हिसाब किताब के बातें मैं याद करके उन्हें बार बार अपने जहन में हिफ्ज़ कर रहा था। मुझे तन्हाई अच्छी लगने लगी, वो सारी बातें याद आने लगी। कितने ज़ीबा लहजात थे वो, वहाँ पर असलन ज़मान मतरा नहीं था, ज़मान की बात ही नहीं थी। वहाँ पर कभी कोई चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, हत्ता बात करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। अगर कुछ बताना चाहते या किसी को कुछ कहना चाहते तो बस एक निगाह करते ही वो सारी बातें उस तक पहुँच जाती और उसके दिल में वो बात पहुँच जाती। क्योंकि वहाँ ज़मान नहीं था तो अव्वल से आखिर तक सब कुछ देख सकते थे। बल्कि मैंने कुछ ऐसे इत्तेफाकात भी वहाँ देखे जो अभी तक इस दुनिया में हुए नहीं थे। जब मेरे वहाँ पर आखिरी लहजात थे, यानी यहाँ वापस आने से पहले, मैंने कुछ अपने दोस्तों को और हमकारों को देखा था कि जो शहीद के कपड़े पहने हुए थे। तो मैं जानना चाहता था कि क्या वाकयान ये लोग शहीद हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। तो मैं मेरे एक रिश्तेदार की मदद से वहीं हॉस्पिटल से दफ्तर में फ़ोन किया और वहाँ मैंने उनकी पैगिरी की और पूछताछ की कि फ़लानी और फ़लानी और फ़लानी, कुछ नाम लेकर मैंने पूछा कि इनकी क्या हाल है, ये सब ठीक ठाक तो है। तो जवाब आया कि हाँ, ये सब सही और सालिम है और सब ठीक ठाक है। मैं ताज्जुब करने लगा। क्योंकि फिर जो कुछ मैंने वहाँ देखा, क्या वो सिर्फ मेरा वहम था या फिर वो हकीकत थी? अगर वहाँ पर वो शहीद के कपड़े पहने हुए थे, तो फिर अभी तक इस दुनिया में ये बाकी कैसे हैं? इस दुनिया में वो ज़िंदा कैसे? जबकि मैंने देखा है कि वो शहादत के कपड़े पहने हुए बरजख की बहिश्त में दाखिल हो रहे थे। कुछ दिन बाद जब मेरी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन मेरे जहन में अभी भी वो बातें चल रही थी कि कैसे और क्यों ये हुआ कि मैं अपने कुछ दोस्तों को देख रहा था कि वो वहाँ शहीद हुए हैं जबकि वो अभी ज़िंदा है और दफ्तर में काम कर रहे हैं। फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैंने उनकी शहादत की खबर देखी? कुछ दिन बाद थोड़ा माहौल बदले इसलिए मैं अपनी खानूम के साथ कुछ ख़रीदारी करने के लिए बाहर चला गया। बस बाज़ार के नज़दीक पहुंचा ही था कि मेरे एक दोस्त का बेटा वहां से गुजरते हुए मुझे सलाम कर कर चला गया। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने अपने हमसर से कहा, मगर ये फलानी शख्स नहीं है? तो उसने कहा, हाँ ये वही है। क्यों, क्या हुआ, क्यों इस तरह पूछ रहे हो? मैं जानता था कि ये शख्स जो है ये ड्रग एडिक्ट था और हमेशा गलत कामों में मुलव्वस था। जब देखो जब ये कोई ना कोई गलत काम करता ताकि इसके पास पैसे जमा हो जाए ताकि ये अपने ड्रग्स खरीद कर अपनी आदत को कंटिन्यू कर सके। तो मैंने अपने खानों से पूछा, मगर ये अभी तक जिंदा है, ये मरा नहीं? मैंने खुद इसे वहाँ बरजख के आलम में देखा है। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, ये बहुत ही मुश्किलात में मुब्तला था, ये कई लोगों से इल्तिमास कर रहा था, बल्कि खुदा के मलाइक से बार बार इल्तिमास कर रहा था और माफ़ी तलब कर रहा था। बल्कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि इसकी मौत कैसे होगी। तो मेरी खानुम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुतमईन है, इसी को देखा तुमने? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, किसी और को देखा होगा शायद। अच्छा, ये तो तुम कह रहे हो कि इसके मौत की इल्लत जानते हो, रीज़न जानते हो, तो बताओ फिर इसकी मौत कैसे होगी? तो मैंने बताया कि हमेशा की तरह ये अपनी आदत, ड्रग्स की आदत पूरी करने के लिए चोरी करेगा और इस बार वो लाइट के पोल पर चढ़ेगा और चाहेगा कि कुछ तारों को काटे और उन्हें बेचे, लेकिन वो लाइट के तार बहुत ज़्यादा पावरफुल वोल्टेज वाले होंगे और उसी वजह से उसे वहाँ शॉक लगेगा और शॉक लगकर वह वहाँ मर जाएगा। तो मेरी खानुम ने कहा, अभी तो वो सही और सालिम है और खुशहाल भी है, देखेंगे आगे क्या होता है। जब उस रात हम वापस आ गए तो मैं बैठकर सोचने लगा कि फिर वो सब जो मैंने देखा, क्या वो वहम था या हकीकत थी? कैसे मुमकिन है कि ये वहाँ मरा हुआ था, यानी इसकी हालत वहाँ मरे हुए और बुरी हालत थी, और यहाँ इस दुनिया में ये अभी भी ज़िंदा है? 2-3 दिन बाद उसके मौत की खबर आई और मैं उसके तशिए जनाजे में भी शिरकत किया और उसके घर में कुरान खानी थी, वहाँ भी गया, लेकिन मैं बिल्कुल हक्का बक्का और हैरान रह गया था कि क्या हुआ। मैंने तो देखा था वो मर गया था, फिर वो यहाँ ज़िंदा था। और उसके बाद मैंने जब पूछा कि इसकी मौत कैसे हुई, तो उन लोगों ने बताया कि बस एक एक्सीडेंट हुआ और ये मर गया। अब मैं बहुत ज़्यादा ताज्जुब करने लगा कि पहले तो मैंने उसे वहाँ मरा हुआ देखा और मैं जानता था कि इसे शॉक लग कि ये शॉक लग कर मरेगा, लेकिन ये अब जिंदा भी था और जब इसकी मौत हुई भी तो एक एक्सीडेंट से हुई। ये फिर क्या हुआ? वहाँ पर तो ये बहुत ही मुश्किल में गिरफ्तार था, इसकी गर्दन पे कई लोगों का हक कुन्नास बाकी था, कई लोगों के पैसों और हिसाब किताब में ये बुरी तरह से फंसा हुआ था। कुछ दिन बाद मेरा एक रिश्तेदार जो इस्फहान के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता था, वो मेरे घर आया और हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे बात करने लगे। बातों बातों में उसने कहा कि बेचारा एक जवान चाहता था कि लाइट के वायर चुराए, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के वायर्स थे। जैसे ही उसने काटने की कोशिश की, वहीं उसे शॉक लगा और वहीं पर वो सूख कर मर गया। पता चला कि शायद उसे ड्रग्स की भी आदत थी। जैसे ही वो ये सब बता रहे थे, मैं उनकी सूरत की तरफ देख रहा था और मैंने कहा, कहीं तुम वो फलानी शख्स की तो बात नहीं कर रहे हो? तो उसने कहा, हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, मुतमईन हो उसी की बात कर रहे हो? मुझे तो बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने कहा, नहीं, मैं खुद गया था उसकी बॉडी की शिनासाई करने के लिए जब उसे शॉक लगकर वो मर गया था। तो ये वही है। अब मुझे और इत्मीनान होने लगा कि जो कुछ मैंने वहाँ देखा था वो सच था। इंशाल्लाह आगे का मतलब अगले ऑडियो में बयान किया जाएगा। तब तक के लिए इल्तिमा से दुआ, खुदा हाफिज़।